आज आप बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परम सत्य की पहचान। और मैं समझती हूँ कि जब हम सच्ची भगवत गीता आपके मुख के द्वारा यह विषय जब सुनते हैं, तो हम अपने इस शरीर के नाम रूप को भूल करके हम अर्जुन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नाम रूप को भूलकर अर्जुन बन जाएंगे। जो अर्जुन सच्ची गीता सुनकर अपने मन को भटकाने से जिसने अपने मन को बचा लिया, आज हम वही अर्जुन बनकर एकाग्रता के कई सिद्धांत आज के लेक्चर्स के द्वारा सुनेंगे और सीखेंगे। परम सत्य की पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जीवन को मार्गदर्शन देने वाला यह विषय बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। फिर से एक बार आपका हम स्वागत करते हैं।
ओम शांति। राजयोग के प्रथम सत्र में आपने आज स्वयं के बारे में सही ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप को यथार्थ रूप से पहचाना। अब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहे, शरीर के भान में जीवन जीते रहे, देहाभिमान में आकर कर्म व्यवहार करते रहे। लेकिन अब हमें स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो प्रथम लेसन से तीन प्रकार के अभ्यास अगर आप सीख लें और रोज की दिनचर्या में बार बार करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी अपने आप को सोल कॉन्शियस बना सकेंगे। वो तीन अभ्यास कौन से हैं? पहला अभ्यास है आत्मस्मृति में रहना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते हर कर्म करते हुए हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूं। ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। हमें स्पष्ट हो कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, मैं इनसे अलग चेतन शक्ति आत्मा हूं। तो आत्मस्मृति में रहने का अभ्यास करें। दूसरा है आत्मदृष्टि। सारे दिन में जिसको भी आप मिलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, उनके मस्तक में देखें कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। और हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है, आत्मिक संबंध से हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एक दो को रूहानी दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। हम स्पष्ट हों कि शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, शरीर से कोई युवा है, शरीर से कोई बुजुर्ग है, शरीर से कोई काला है, शरीर से कोई गोरा है, लेकिन हम शरीर से अलग आत्मा है, आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। और तीसरा अभ्यास, अटेंशन ये रखें कि हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक जो भी कर्म करते हैं वो आत्म धर्म में स्थित होकर के करें। और आज मॉर्निंग के लेसन में आपको बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा के असली गुणधर्म कौन से हैं, कौन से हैं? हमारे मूल सात गुणधर्म हैं, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारी ओरिजिनल सेवन क्वालिटीज हैं। ये हमारे असली गुणधर्म हैं। हम प्रत्येक कर्म इन गुणधर्मों में स्थित होकर के करें। हमें प्रत्येक कर्म शांति से, शुद्धि से और समझ पूर्वक करने हैं। कोई भी कर्म अशांत होकर जल्दबाजी से, स्वार्थ भाव से नहीं करना है। ये तीन अभ्यास बार बार आप करते रहेंगे, कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि मन अंतर्मुखी बनता जाएगा, बहुत सहज स्वयं के प्रति आप केंद्रित होते जाएंगे, कर्मेंद्रियों पर संयम महसूस होगा और आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। तो प्रथम लेसन राजयोग का फाउंडेशन है, आत्मचिंतन योग की आधारशिला है। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो पिता परमात्मा कौन है जिनके साथ योग लगाना है। केवल स्वचिंतन आत्मचिंतन को योग नहीं कहेंगे, क्योंकि योग शब्द दो सत्ता के मिलन को कहा जाता है। तो आत्मचिंतन के द्वारा मन को अंतर्मुखी बनाने के बाद अब आवश्यक है हम अपने मन और बुद्धि को उस परम शक्ति परमात्मा से जुड़े, तब योग कहा जाएगा। वो परम शक्ति परमात्मा कौन है? जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु परमेश्वर, गॉड, खुदा कहकर याद करते रहे हैं। उनका सत्य परिचय क्या है? अगर ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछूं कि परमात्मा कौन है, तो क्या आप सबके द्वारा एक उत्तर मिलेगा? मिलेगा? नहीं। हर एक अपनी अपनी भावना, श्रद्धा अनुसार बताएंगे। जिसको श्री राम में श्रद्धा है, वे श्री राम को ही भगवान समझते हैं। जिनको श्री कृष्ण से प्यार है, वो कृष्ण को ही परमात्मा समझते हैं। कोई प्रकृति को परमात्मा मानते हैं, चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य है, लोग उससे ही प्रभु की अपरंपार लीला समझते हैं। वे कहते हैं नेचर इज गॉड। कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं। कोई सब में भगवान है, ऐसी भावना रखते हैं। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक विश्वास हैं, अनेक मते हैं। जबकि हम सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, टू और थ्री नहीं कहा जाता है। और ये विवेक की भी बात है कि परम सुप्रीम ऊंचे से ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते। तो अंडरस्टूड है कि जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, यही सिद्ध करता है कि सत्य हम नहीं जानते हैं। परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। हमारी बुद्धि में ईश्वर के बारे में जो कुछ ज्ञान है, चाहे ऋषि मुनियों से वो हमने प्राप्त किया है, साधु संतों से प्राप्त किया है, शास्त्रों से प्राप्त किया है, या हमें अपने परिवार के तरफ से जो परंपरा की मान्यताएं प्राप्त हुई हैं, वही हमारी बुद्धि में है। मीन्स मनुष्यात्माओं ने परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए जो कुछ प्रयास किए, जो साधना की, जो चिंतन उन्होंने का किया और उन्होंने अपनी साधना और बुद्धि की पवित्रता के बल से जो कुछ अनुभव किया, सोचा, समझा, वही बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। यही कारण है हरेक की अपनी मत रही है, हरेक का अपना चिंतन रहा है, हरेक का अपना अनुभव रहा है। इसलिए हरेक ने अपनी अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस के अपने विचार हैं, तो श्री अरविंदो का अपना चिंतन है, शंकराचार्य जी का अपना कहना है, वल्लभाचार्य जी का अपना बताना है। इस प्रकार अनेक धर्म, धर्म पिताएं, संप्रदाय, मतें आज एक ही परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम सत्य नहीं जानते हैं? हमें दो बात बुद्धि में स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि कोई भी मनुष्यात्मा परमात्मा का सही परिचय नहीं दे सकती है। अगर दे सकती थी तो हमें कब से प्राप्त हो जाना चाहिए था? इसलिए ऋषि मुनियों ने भी अपनी लंबी साधना के अंत में ये स्पष्ट इकरार किया कि ईश्वर अनंत है, हम उनके अंत को नहीं पा सकते हैं। तो अंडरस्टूड है कि परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्यात्मा नहीं दे सकती है। दूसरी बात हम ये स्पष्ट कर लें कि परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। हम कहते भी हैं कि सत्य स्वयं प्रकट होता है, सत्य स्वयं सिद्ध है, परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और वे स्वयं ही अपना सत्य परिचय देते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपने सत्य परिचय की जो परिभाषा हमें बताई है, वो परिभाषा मैं आपके सामने रखती हूं। मैं पांच बातें बताऊंगी परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके मापदंड है। पहली बात, परमात्मा का सही परिचय हम उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करें, क्योंकि परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक जाति, देश, समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए उनका सही परिचय हम उसे कह सकते हैं जो सभी धर्म को मान्य हो। कुछ लोग माने, दूसरे उसे न माने, उनको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, परमात्मा उनको कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी निश्चित है। जो शरीर लेते हैं वो शरीर छोड़ते भी, जो जन्म लेते हैं वे प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर प्रकृति के तत्वों का बना है, हम प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं वे कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती है। वो कर्म बंधन में बंधने लगती है, वो देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है, संबंध में बंध जाता है, सुख दुख के बंधन में बंधता है। इसलिए परमात्मा उसको कह सकते हैं जो जन्म मरण के, सुख दुख के, देह संबंध के, कर्म के, प्रकृति के बंधन से न्यारे हैं। इसलिए परमात्मा को हम सदा मुक्त, सदा स्वतंत्र कहते हैं। हम भक्ति में भगवान से मुक्ति मांगते हैं, हे भगवान, हमें इस दुख से छुड़ाओ। हम गाते हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हम जन्म मरण के फेरे से छूटना चाहते हैं। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो इन सभी बंधनों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा शब्द ही स्पष्ट करता है, जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक स्वामी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही परमा है। उनके ऊपर ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक बन सके। इसलिए परमात्मा को परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहा जाता है। हाईएस्ट ऑफ द हाई, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कहा जाता है। उनके ऊपर और कोई नहीं है, इसलिए उनको ऑलमाइटी, फाइनल अथॉरिटी कहा जाता है। और चौथी बात, कि परमात्मा उनको कह सकते हैं जो अपने ऊंचे से उच्च गुणों में, स्थिति में, कर्तव्यों में सदा स्थित है। बदलते नहीं है। आत्मा के लेसन में आपने समझा कि आत्माओं के गुण बदलते हैं। ओरिजिनली हम सब शांत है, शुद्ध हैं, लेकिन आज हम अशांत पतित बन गए हैं। आत्माओं के गुण बदलते हैं। परमात्मा अपरिवर्तनशील, परम, सर्वोच्च, एक रस है। इसलिए केवल उनकी महिमा में हम कहते हैं कि वो सदा पावन है, सदा मुक्त है, सदा शिव है, और किसी के लिए सदा, फॉर एवर, ये शब्द हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते भी हैं कि भगवान को पहचानना आसान है, क्योंकि वो अपने परम गुणों में सदा स्थित है। वे कहते हैं मनुष्य को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर घड़ी अपना रंग बदलता रहता है। और पांचवी बात, परमात्मा उनको कह सकते हैं जो सर्वज्ञता है और सदा दाता है। सर्वज्ञता है, मीन्स ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, जो सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानते हैं, वे ही आकर सारे सनातन सत्यों को रिवील करते हैं। संसार के आदि मध्य अंत को आलोक परलोक को जानते हैं, इसलिए परमात्मा के बारे में हम कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है। आत्माओं के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ है, हमारा नॉलेज लिमिटेड है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते हैं। परमात्मा सब कुछ जानते हैं और वे सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। मनुष्यात्मा सदा दाता नहीं है, है? हाँ? नहीं, बेशक हम मनुष्यात्माएं भी पहले दाता थी, देवता थी। देवता मीन्स देने वाला, दाता। इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता, वरदाता। लेकिन आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज हम क्या बन गए हैं? लेवता, लेवता बन गए, लेने वाले। हमें चाहिए, चाहिए, हर एक से चाहिए, हम लेवता बन गए, देवता नहीं रहे। परमात्मा सदा दाता है, इसलिए उसकी महिमा में हम कहते हैं कि शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता। हम दाता के रूप में उसकी महिमा करते हैं। तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं। हम तो अनेकों को भगवान समझते रहे हैं, सब में भगवान की भावना रखते रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? किसको परमात्मा कह सकते? क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। मनुष्यात्मा परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते। इसलिए परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो हम मेहनत करके प्राप्त कर लें। लौकिक में भी एक बच्चा अपने पिता समान रूपवान हो सकता है, गुणवान, बुद्धिवान, विद्वान, धनवान, बलवान हो सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। पिता जैसा बन सकता है, पिता ही नहीं बन जाता है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, क्रिएटर क्रिएटर है, क्रिएशन क्रिएशन है। तो हम मनुष्यात्माएं भी परमात्मा जैसी ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन सकती हैं, लेकिन परमात्मा ही नहीं बन जाती। बनाने वाला सदा बनने वाले से ऊंचा ही रहता है। इसलिए पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। इससे स्पष्ट है। दूसरी बात कि जो भी साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, गुरु, विद्वान, पंडित, आचार्य, संत, महंत जो भी हैं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। बेशक वे महात्माएं हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि महान भी परमात्मा की याद से बने हैं। योग साधना करके ही कोई महान बनता है। तो बेशक वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण थोड़ी भी कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, हम उनको ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते, अल्पकाल की प्राप्ति नहीं कराते। और तीसरी बात, जो भी धर्म पिताएं इस सृष्टि रंगमंच पर हुए हैं, जिन्होंने आकर इस सृष्टि रंगमंच पर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, आप सब जानते हैं इतिहास को कि कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक जी, शंकराचार्य जी, अशोक जरथुस्ट, अब्राहम, इस वर्ल्ड ड्रामा में जो भी धर्म स्थापक हुए हैं वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इसलिए इन धर्म स्थापकों ने तो स्वयं ही स्पष्ट कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम तो उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो आगे चलकर अपनी भावना से धर्म स्थापक को भगवान मान लेते हैं। लेकिन इन धर्म स्थापकों ने स्वयं अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात जो आपको और विवेक से समझनी है, जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता हैं, अंबा दुर्गा सरस्वती, श्री हनुमान, श्री गणेश, जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। सबसे पहली बात तो देखिए, देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही। इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की पूरी कथाएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं। इनके अनेक देह संबंध बताए गए हैं, उन संबंधों की पालना लेते हुए उन्हें दिखाया गया है। इन देवी देवताओं के माता पिता, बंधु, गुरु, सखा दिखाए गए, इन्हें श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाया है, जिन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप इन देवी देवताओं को दैवी राजाई भोगते हुए दिखाया है। तो जो भोगता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा किन विशेषणों से हम करते हैं, कि वे अजन्मा है, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन, कर्मातीत, अकाल मूरत उसे कहा जाता है। तो अब आप बताइए कि सही अर्थ में परमात्मा किसको कह सकते हैं? ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्म को स्वीकार्य है? कौन सा स्वरूप है? स्वरूप, रूप कौन सा? तो मुंझने की बात नहीं है, परमात्मा शब्द ही परमात्मा का स्वरूप सिद्ध करता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, वे अपने गुण और कर्तव्य से परम ऊंचे ते ऊंचे है। रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे किसी को महात्मा हम कहते हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा है। वो भी ज्योति बिंदु आत्मा, हम भी ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन वे गुण और कर्म से महान है, इसलिए हम उसे महात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से पवित्र है उसे पुण्यात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से आत्मा पतित है उसे पापात्मा कहते हैं। लेकिन है तो हर एक ज्योति बिंदु आत्मा न। तो परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुण और कर्तव्यों से परम ऊंचे ते ऊंचे। तो हम बुद्धि में ये स्मृति ऐड करें कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ये जो देखने में आ रहा है वो शरीर मैं भी नहीं हूं, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा का ये ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। चित्र में आप देखिए कि ज्योति बिंदु परमात्मा को हिंदू भाई बहने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाते हैं। वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाया है। इवन आपने कई मंदिरों में, कई चित्रों में देखा होगा कि शंकर को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाया है, तपस्या करते हुए दिखाया है। तो ये सोचने की बात है कि शंकर स्वयं भगवान है तो वो किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा से ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। शंकर तपस्या करते हैं, मीन्स उनके ऊपर भी कोई शक्ति है, उस परम शक्ति, कल्याणकारी शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, रामेश्वर, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नेपाल में इवन पशुपतिनाथ, जहां ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, और शिवलिंग, शिवालय तो हर शहर, गांव, गली गली, जंगलों में भी पाए जाते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को देवों का देव, त्रिदेव के भी रचयिता परमात्मा कहा जाता है। तो भारतवासी हिंदू भाई बहने, असली भक्ति एक निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा की करते थे। इसलिए प्राचीन राजाएं, प्राचीन कवि शिव के ही उपासक दिखाए जाते हैं। ये तो जैसे जैसे इंसान बॉडी कॉन्शियस बनता गया, निराकार में मन नहीं लगा सका, इसलिए मध्य युग में देवताओं की उपासना शुरू हुई। चित्र में आप देखिए, मुस्लिम भाई बहनों को भी दिखाया है, वे तो स्पष्ट ही कहते हैं कि अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, नूरे इलाही कहते हैं कि परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है। इलाही मीन्स खुदाई, अलौकिक ज्योति बिंदु है। वे भी मक्का हज करने जाते हैं, वहां पवित्र काबा की इमारत में शिवलिंग आकार का ही एक प्रतीक है, अंगुष्ठ आकार का, जिसको संग ए अस्वद कहते हैं। वे भी परमात्मा के निराकार स्वरूप को मानते हैं। जो जापान के बौद्धिस्ट भाई बहने हैं, वे भी शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं, उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेषकर महायान पंथी बौद्धिस्ट शिवलिंग आकार के प्रतीक को शांति दाता कहते हैं और उनसे ध्यान लगाते हैं। आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी जी को देखिए, हम उनको ध्यान करते हुए तपस्या करते हुए दिखाते हैं, जरूर उनसे ऊपर कोई शक्ति है जिनके ध्यान याद उपासना में वे बैठे हैं, जिनसे ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। गुरु नानक जी ने भी स्पष्ट कहा है, उन्होंने एक ओंकार, एक निराकार, एक ही सत्य नाम की महिमा की है कि वे अकाल मूरत हैं, अयोनी हैं, निर्भय निर्वैर है। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि गॉड इज लाइट, अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा है, गॉड को काइंडली लाइट कहा है। पारसी भाई बहनों को भी आप देखेंगे, वे भी परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आतश अग्नि के रूप में पूजते हैं। तो विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म हैं और इनके जो असली धर्म स्थापक है, उन सब का मूल इशारा एक ही रहा है कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में उनको निराकार कहा जाता है। उनका अपना दिव्य आकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप। उनका अपना दिव्य नाम है शिव कल्याणकारी। जिसको हम याद करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, शिव कल्याणकारी है, सुंदर अति पावन है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक नाम नहीं है। उनका नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। असली मूल नाम है शिव। गुणवाचक अनेक नाम है, कर्तव्यवाचक अनेक नाम है उनके। आपने देखा उसको अमरनाथ, विश्वनाथ, भोलानाथ कहा जाता है, उसको पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर कहा जाता है। पर हमें उनके ये हजारों नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, शिव कल्याणकारी। जिसको प्यार से यहां हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स शिव बाबा, बाबा मीन्स पिता, शिव पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनकी ईश्वरीय संतान है। तो हमारे लिए ये कितनी खुशी और नशे की, गौरव की बात है कि हम भगवान के बच्चे हैं। दुनिया में कोई उद्योगपति मिनिस्टर ऑफिसर के बेटे को भी कितना नशा होता है कि मेरे पिता ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, उद्योगपति हैं, डॉक्टर हैं, हमें नशा है, हम भगवान के बच्चे हैं, है नहीं है हम सिर्फ मुख से गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके बच्चे जैसा जीवन नहीं है, इसलिए वो प्राप्ति नहीं है, वो खुशी और नशा नहीं है। तो खुद को आत्मा जानकर, पिता परमात्मा को पहचान कर, उनको याद करना, उनसे संबंध जोड़ना, उनके गुण और शक्तियों को जीवन में धारण करना, उसको योग कहते हैं। योग कोई और चीज नहीं है, योग कोई क्रिया नहीं है, भगवान से संबंध जोड़ना, मनोमिलन मनाना, उनके याद और प्यार में रहना, उसे योग कहते हैं। इसलिए प्रथम दो लेसन में ये दो मूल सत्य समझाए जा रहे हैं कि आप स्वयं कौन हैं, पिता परमात्मा कौन है। वो पिता परमात्मा नेक्स्ट सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है। भक्ति में हम महिमा में गाते भी हैं कि तू प्यार का सागर है, गाते हैं ना। परमात्मा शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, शांति दाता है, दुख हरता सुख करता है, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है। हम कह सकते हैं कि परमात्मा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति के एक इटर्नल फाउंटेन के समान है, एक इटर्नल सोर्स के समान है, जहां से निरंतर सदाकाल के सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई शीतल जल के फव्वारे के पास आप जाते हैं तो उनके समीप जाने से ही ऑटोमेटिक शीतलता का अनुभव होता है, हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें फव्वारे से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि आप हमें शीतलता दो, केवल हमें उनके समीप जाना होता है, उनके सानिध्य से ही शीतलता का अनुभव होता है। तो परमात्मा भी सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के सागर है, अनादि स्रोत है, अविनाशी फव्वारे हैं, हमें उनसे मांगना नहीं है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हमें मांगना नहीं है, हमें रिक्वेस्ट प्रार्थना नहीं करनी है, हमें क्या करना है? उनके समीप जाना है, मन और बुद्धि से, दिल के सच्चे प्यार से उनका बनना है, तो उनकी याद से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बनती है, क्योंकि वो दाता है, सागर है, हम उनके बच्चे हैं। ये हमारा अधिकार है, स्वतः हमें प्राप्त होता है, हमें सिर्फ लायक बच्चा बनना है, उनसे कनेक्शन और रिलेशन जोड़ने हैं। तो ऐसी गुणों के शक्तियों के सागर परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं, वे कौन सा कार्य करते हैं? तो चित्र में बताया है कि परमात्मा हमें पतित से पावन बनाते हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, वे सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। चित्र में बताया है कि सारी सृष्टि जब विकारों के पंजे में फंस जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सब वशीभूत हो जाते हैं, जब इस विश्व पर अज्ञान अंधेरा छा जाता है, तब वो ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, हमें अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं, मींस पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, और ऐसा कार्य करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? तो नेक्स्ट चित्र में आप देखेंगे परमात्मा के अवतरण का समय कौन सा हम गायन करते हैं? भगवान सृष्टि पर कब आते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हो? कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे प्रश्न है कि धर्म की अति ग्लानी कब होती है? कलियुग के अंत समय, कलियुग अंत को अति धर्म ग्लानी का समय कहेंगे ना, न कि द्वापर के अंत को, न कि त्रेता के अंत को, न कि सतयुग के अंत को, लेकिन कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय। तो चित्र में बताया है कि कलियुग अंत और सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, और आप सबको यहाँ बुलाकर हमें यही संदेश देना है कि भाइयों और बहनों, सृष्टि चक्र में वर्तमान समय जो चल रहा है वो कलियुग अंत, सतयुग आदि का संधि काल, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का चल रहा है, जब स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कल्याणकारी शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें कलियुगी पतित नर नारी से सतयुग के लायक देवी देवता बनना है। ये समय है जब स्वयं परमात्मा ने अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ में कोई जौ घी तिल की आहुति नहीं देनी है, लेकिन हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन विकारों को हमें स्वाहा करना है, बुराइयों को छोड़नी है, दिव्य गुणों को धारण करना है, अर्थात कलियुगी नर नारी से सतयुगी देवी देवता बनना है। तो वर्ल्ड साइकिल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जब स्वयं भगवान हमें पावन बनाने आए हैं। तो अंडरस्टूड है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, मीन्स जरूर वो कहीं और रहते हैं जहां से वे यहां अवतरित होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि परमात्मा पिता कहां रहते हैं, उनका असली निवास स्थान कौन सा है। आज सुबह के लेसन में आपने समझ लिया है कि हम भी कहां से आए हैं, परम धाम से आए हैं। ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, है ना? ये दुनिया हमारे लिए भी कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है। तो ये दुनिया हमारा ही घर नहीं है तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो हम आत्माओं का असली घर है परम धाम, वो ही परमात्मा का भी असली निवास स्थान है। इस मनुष्य लोक से भी पार, पांच तत्वों से पार, प्रकृति का छठवां अखंड लाल ज्योति तत्व है, जो सबसे ऊपर दिखाया है लाल ब्रह्म तत्व। परमात्मा उस ब्रह्मलोक के निवासी, इसलिए भक्ति में भी यादगार देखिए, जब भगवान को याद करते हैं तो हमारी नजर कहां जाती है? ऊपर जाती है, हमारी बुद्धि ऊपर जाती है। हम एक दो को याद भी दिलाते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है ना? कोई गलत काम करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाता है तो लोग उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे। परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। कलयुग के अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं। साधारण तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। तो ये है परमात्मा का सही परिचय, उस परम सत्य की सही पहचान जो स्वयं परमात्मा ने ही दी है। तो ऐसे कल्याणकारी, सुखदाता, सर्वशक्तिमान, सदा पावन पिता परमात्मा को याद करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे पिता के कार्य में मददगार बन जाना हमारी फर्ज है।